शांति। बाबा ने हमें कितने खजाने दिए हैं, हर एक मन में वो सोचते सोचते बाबा के सुख के सागर की लहर में अनुभव कर रहे होंगे। परंतु सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, क्योंकि बाबा हर एक को दे रहे हैं, परंतु हर एक कितना वो लेकर के अपने अंदर वो समा रहे हैं और अपना वो खजाना खुद बना रहे हैं, वो हर एक फिर समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खजाना है अपनी स्थिति। आप इस बात को मानेंगे? कौन समझता है कि सबसे बड़ा खजाना अपनी स्थिति है? माताओं ने समझा प्रश्न? माताएं हाथ नहीं खड़ा कर, ओके ठीक है, अभी समझ में आया। क्यों? क्योंकि एक तो मेरी स्थिति मेरा खजाना है, परंतु साथ ही साथ मेरी स्थिति मेरी जिम्मेवारी भी है। तो मेरी जिम्मेवारी है खुद का अवस्था अथवा स्थिति बनाना और फिर उसको संभालना और फिर उसको पालन करते आगे बढ़ते चलना। और ये खजाना यदि हमने अपने पास संभाल के रखा है तो कोई भी मेरे से वो छीन नहीं सकता और कोई सर्कमस्टेंसेस भी इसको नीचे ऊपर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो मेरी अंदर की चीज है वो मेरे पास ही रहती है, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। मैंने यदि किसी को छुट्टी दे दी या चाबी मैंने खो ली तो फिर तो वो मेरी जिम्मेवारी, परंतु वैसे तो कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। और उसमें भी आप देखेंगे कि बाबा हमें जो हर रोज पालना दे रहे हैं, हर रोज की पालना के आधार से हम अपना ये स्थिति का खजाना आगे बढ़ा सकते हैं, संभाल सकते हैं। आप सोचो कि अपनी स्थिति बनानी है तो उसका आधार जैसे बाबा ने बताया है कि योग के चार पिलर्स होते हैं, तो वो जो पिलर्स हमारे साथ है तो हमारी स्थिति हमारे हाथ में है। और उसमें भी हम कभी भी कोई कारण बाबा को नहीं दे सकते कि इस कारण से मेरी स्थिति नीचे ऊपर हो गई। क्यों? क्योंकि हर प्रकार के कारण का बाबा ने हमें निवारण भी दिया है। कुछ भी सिचुएशन आ जाए उसके लिए बाबा का उत्तर पहले से ही हमें मिला हुआ है। कभी बाबा को हंसी आती कि आपको एग्जामिनेशन पेपर के पहले से ही प्रश्न मिले हुए हैं और इतना समय भी मिला हुआ है अपनी तैयारी करने का, तो भी जब छोटी सी परीक्षा आती है तो उस छोटी सी परीक्षा में भी आप पास नहीं कर पाते हैं। तो आप सोचो जब कोई बड़ी परीक्षा आएंगे तो उस बड़ी परीक्षा में क्या हाल होगा। तो अभी फिर भी बाबा मेहरबान है, बाबा रहम दिल है, बाबा हमें मदद कर रहे हैं और बाबा फिर भी कहते हैं अच्छा ठीक है चलो अभी और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अभी भी चांस है अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बना करके उसको बहुत अच्छी तरह से मजबूत करने का, जिसका गायन आता है कि अंगद का पैर हिलाने के लिए भी आए तो भी उसको हिला न सके। और मामा कहा करती थी कि आपने तो ये कहा कि हम कोई भी हालत में अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करेंगे। और फिर एक छोटी सी चींटी आ गई और उस चींटी के कारण आप हिल गए, क्या हो गया? तो हम अपने आप को देखें, सवेरे से अब तक और अब से फिर रात्रि तक हमारी स्थिति किस प्रकार से चलती रही है। और बेशक अभी तो आप मधुबन में है और मधुबन के लिए एक बहुत सुंदर शब्द आता, स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग तो स्वर्ग ही होगा और आश्रम तो अनेक आश्रम है, परंतु एक ही स्थान है मधुबन जिसको हम कहेंगे स्वर्ग आश्रम। तो अभी तो आप सभी स्वर्ग आश्रम में बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि जो बाबा ने बताया है कि किस प्रकार से बहुत श्रेष्ठ बहुत ऊंची स्थिति होनी चाहिए वो तो आप अनुभव कर ही रहे हैं, परंतु आप ऐसे अनुभव यहाँ से लेके जाएं जो ये अनुभव आपको सदा वहाँ साथ रहे, जो कोई भी कारण से इस अनुभव से आप हिले नहीं, क्योंकि कोई भी एक बारी की चीज की टेस्ट बैठ जाती है तो उस टेस्ट को हम भूलते नहीं हैं। और यदि वो बहुत अच्छी लगती है तो वो टेस्ट को हम बार बार फिर अनुभव करने चाहते हैं। तो ऐसे अवस्था का जो रस होता आपने वो अनुभव कर लिया यहाँ मधुबन में, तो फिर आप कहेंगे कि ये ऐसे अवस्था तो मुझे सदा अपने साथ बना करके रखनी ही है, कोई भी कुछ कारण से मुझे उस स्थिति से बिल्कुल नीचे आना ही नहीं है। तो आप ये यहाँ पर दृढ़ संकल्प करके जाएंगे तो फिर वो आपको दृढ़ संकल्प में बाबा की शक्ति भी मदद मिलेंगी और फिर वो आपका लक्ष्य पूरा भी हो पाएगा। तो श्रेष्ठ स्थिति ऊंची स्थिति किसको कहा जाता? वैसे तो हम सबका लक्ष्य है बाप समान बनने का, परंतु बहुत प्रैक्टिकल रीति से सोचते हैं तो जबकि हम कहते हैं कि ऊंची स्थिति, तो ऊंची स्थिति में एक तो पहले आत्मा बहुत हल्की हो, आत्मा के अंदर बिल्कुल खुशी का खजाना साथ हो, अचल अडोल स्थिति हो, कोई भी बात आए परंतु हम उसमें हिले नहीं, हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो, हमारे कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो। उस दिन बाबा ने एक बहुत सिंपल बात बताई साकार मुरली में। बाबा ने कहा कि हर एक पुरुषार्थी है और उसमें शायद अव्यक्त मुरली रिवीजन कोर्स की थी, हाँ शायद संडे की अव्यक्त रिवीजन कोर्स की मुरली थी। तो बाबा बता रहे थे कि एक ही पढ़ाई है, टीचर भी सबका एक है, परंतु फिर भी सभी स्टूडेंट्स नंबर वार। और उसका मुख्य कारण बाबा ने बताया एक छोटी सी बात, कहेंगे कि बहुत छोटी बात है परंतु वही बात का सब बातों का आधार है। बाबा ने कहा आत्म स्मृति, आत्म अभिमानी स्थिति। तो जब आत्म अभिमानी स्थिति है तो उस स्थिति में सर्व कर्म इंद्रियों पर जीत है, और जबकि आत्म स्मृति कम है तो फिर कोई न कोई कर्म इंद्रिया अपनी तरफ खींच लेती। तो कहने का मतलब कि ऊंची स्थिति श्रेष्ठ स्थिति, उसमें पहली मुख्य बात तो ये भी आएंगी जरूर आत्म स्मृति की स्थिति। और देह भान यदि थोड़ा सा भी आ गया सूक्ष्म में भी तो फिर अनेक और प्रॉब्लम्स आ जाते, परंतु ऊंची स्थिति, ऊंची मेरी अवस्था रहे, उसके लिए चाहिए आत्म स्थिति का अभ्यास। और उसमें भी जबकि हम अपनी स्थिति को इतना ऊंचा रखते हैं, तो उसमें बाबा का साथ का अनुभव सहज ही होता। ऐसे नहीं है कि जब स्थिति हमारी अच्छी नहीं है बाबा ने हमें छोड़ दिया है, नहीं, बाबा तो हाथ हमारा नहीं छोड़नी चाहता, परंतु बच्चे अलबेले होते हैं तो बाप का हाथ छूट जाता। तो इस कारण से जब ऊंची स्थिति हम अपनी बनाकर रखते हैं तो बाबा के साथ का बहुत ही सुंदर अनुभव, एक बहुत नजदीकपन का अनुभव रहता। तो ऊंची स्थिति बनाने के लिए हम किस प्रकार की बातों का ध्यान रखें? आप फिर भी कहेंगे कि ये तो बातें हम जानते हैं, परंतु मैंने देखा है कि जानते हुए भी कभी कभी हम इन बातों को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, और जिस तरह से बैलेंस होना चाहिए वो हमारा बैलेंस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो हमारे चार सब्जेक्ट्स है, वैसे आम तौर से हम कहेंगे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और ब्राह्मण जीवन में, हाँ, सेवा भी ब्राह्मण जीवन का श्वास है, परंतु बहुत देखा गया है कि जब सेवा का आकर्षण होने लगता और सेवा में हम जुट जाते हैं तो सेवा में समय इतना चला जाता जो फिर अपने ऊपर स्थिति पर ध्यान थोड़ा कम हो जाता। तो हम थोड़ा एक घड़ी के लिए सोचें, हम बाबा के पास क्यों आए? हम बाबा के पास आए थे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, हम बाबा के पास आए भगवान की संबंध का अनुभव करने के लिए, हम भगवान के पास आए पतित से पावन बनने के लिए, और फिर बाबा ने श्रेष्ठ कर्म का भाग्य बनाने के लिए हमें सेवा का भी सब्जेक्ट दिया, परंतु वो बिल्कुल ही चौथा सब्जेक्ट हो जाता। पहले आता ही है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के बगैर योग नहीं, और जबकि ज्ञान और योग है तो फिर हमारी जीवन की धारणाएं भी उस अनुसार चलती। और यदि ये तीन सब्जेक्ट्स हमारे अंदर है तो हमारे स्थिति का आधार है ये तीन सब्जेक्ट्स, और फिर उस अनुसार सेवा ऑटोमेटिकली ही चलती। परंतु कई बार ऐसे हो जाता जो हम अपनी स्थिति का आधार सेवा बना लेते, और यदि इस तरह का हमारा चलता तो उसमें बहुत चैलेंजेस आती, बहुत कठिनाइयां आती। क्यों? क्योंकि सेवा कोई हमारे कहने से नहीं होती, सेवा कोई हमारी चाइना से नहीं होती, परंतु सेवा अपनी स्थिति द्वारा होती। और जब अपनी स्थिति पर ध्यान है तो सेवा का मौका बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, चांस मिलते ही रहेंगे। और यदि तीन सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं तो फिर हम सेवा में मस्त हो जाते और उसमें इतना व्यस्त हो जाते जो खुद की स्थिति का ध्यान कम रहता। और जब ऐसे बात होती तो फिर अनेक प्रकार की मुश्किलें आती ही रहती। बाबा ने उस दिन कहा, मैं समझती वरदान था, एक बार बाबा ने बहुत अच्छी बात मुझे कही थी, एक वरदान ही था बाबा का मानो। बाबा ने कहा कि बच्ची, जहां तुम जाएंगे सेवा तुम्हारी छाया के समान पीछे पीछे आते रहेंगे। तो हम सबके लिए ये बात है कि आप जहां पर जाएंगे छाया आपके समान आपके साथ है ही है, कोई आपको अपनी छाया से अलग नहीं कर सकता, तो वो आपकी छाया के समान आपके पीछे पीछे आती ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्थिति को देखेंगे अनुभव करेंगे उनको भगवान का आकर्षण होगा। वो आपसे अवश्य ये बात पूछेंगे कि आपको क्या मिला, आपको आपने क्या पाया, और हम भी वही प्राप्ति करने चाहते हैं। तो तीन सब्जेक्ट्स के आधार पर यदि हम अपनी स्थिति बनाने चाहते हैं तो हमारे स्थिति का फाउंडेशन मजबूत रहता। कारण कि सेवा एक तो अनेकों के संबंध से होती, तो जब हम अपनी स्थिति पर ध्यान देते तो फिर किसी का भी भाव, किसी का भी स्वभाव, किसी का भी संस्कार, उन बातों का हमारे ऊपर असर नहीं होता। और रियलिटी तो ये है कि यदि अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं है और बाहर मुक्ता है, सेवा है बाहर की बात, तो हमारा ध्यान चला गया बाहर, तो हमने बाहर को देखा, तो फिर उसमें जो बातें चलेंगी वो जरूर हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ बात अच्छी है तो हम खुश होंगे, और यदि कोई बात हमारे मन पसंद नहीं हो रही है तो फिर उसका हमें दुख होगा। परंतु हमारी स्थिति ऐसे हो जो वो बातें हमें ना हिलाए, परंतु हमारी स्थिति अनुसार फिर हम उन बातों का, जो कुछ कुछ ऐसी भी बात हो जो कुछ ठीक नहीं है, हम अपनी स्थिति द्वारा उन बातों को ठीक कर सकें। प्रैक्टिकल तो दादियों का एग्जाम्पल हमारे सामने है। मुझे एक बात याद आती है कि जब दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी 1977 में लंदन में पहले बार आई थी, तो उस समय एक विशेष अनन्य माता कोई बात के कारण, ऐसे तो दादी के तैयारी में हम सब खुशी खुशी से सब तैयारियां कर रहे थे, परंतु कुछ ऐसी बात हो गई और वो माता फिर दादी के सामने आई नहीं। तो मुझे उस माता के लिए बहुत ख्याल था कि वो बेचारी मिस कर रही है, इतना सुंदर मौका है दादी से भाग्य लेने का, बनाने का, और वो माता मिस कर रही है। तो दादी ने भी मेरे से पूछा, दादी जी उसको अच्छी तरह से जानती थी, दादी ने उसके लिए पूछा कि वो बहन कहाँ है। तो मैंने दादी को बताया कि वो बहन शायद इस बात के कारण थोड़ा अपसेट है, वो नहीं आई है। तो उस दिन तो फिर दादी ने कुछ नहीं बोला, परंतु दूसरे दिन सवेरे मैंने सोचा कि मैं उस माता के पास जाकर उसको कुछ समझाऊं, कुछ मनाऊं, और कम से कम वो 45 मिनट्स ड्राइव पर वो बहन थी। तो मैं दादी के पास आई कि दादी मुझे लगता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए और उसके उसको कुछ समझा करके कुछ ले आना होगा। तो दादी ने मुझे इतनी अच्छी बात बताई, दादी ने कहा कि तुम अपने मन को, दिल को शांत कर दो, आप अपने मन की शांति का, शुभ भावना का उसको वाइब्रेशंस दियो, और आप सोचेंगे कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे मैं इसको ठीक करूं, तो वो जो संकल्पों का हलचल है वो उसके पास पहुंच रहा है, उससे उसको कोई सहयोग नहीं मिल रहा। परंतु आप अपने मन को शांत कर दो तो फिर बाबा के वाइब्रेशंस उसको पहुंचेंगे और देखना वो अपने आप ही आएंगे। तो सचमुच मैंने उस बात का ट्रायल किया, और दादी बेशक उसको जानती थी, दादी का भी उसके प्रति बहुत स्नेह था, परंतु दादी की स्थिति और दादी की ट्रेनिंग, और उस समय मैंने इस बात का अभ्यास किया, ऐसे नहीं कि वो भूल ही जाता, नहीं, परंतु जब वो बात याद आती थी तो मैं उसको बाबा के वाइब्रेशंस, बाबा की लाइट माइट भेजती रही। और सचमुच कुछ घंटों के बाद शाम के समय वो माता खुद ही सामने आ गई और दादी ने उसको कोई बात नहीं वर्णन की, क्या हुआ, क्यों हुआ, नथिंग। दादी ने सिर्फ उसको बहुत स्नेह की दृष्टि दी और उसे ऐसे गले लगाए, बस कुछ बात ही नहीं है। तो मैंने देखा कि एक तरह से तो कहेंगे छोटी बात थी, परंतु दूसरी तरह से ये एक अनन्य बहन थी और यदि उसके दिल को कुछ ऐसे ठेस लग जाती जो वो किनारा कर लेती तो उसका तो भाग्य खो जाता, परंतु बाबा के कार्य में भी वो थोड़ी सी गैप हो जाती। परंतु दादी ने अपनी स्थिति द्वारा बिल्कुल डेमोंस्ट्रेशन किया कि कैसे दूसरे आत्मा को भी गुड वाइब्रेशंस भेज सकते हैं और उसके मन को भी बदली करके उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल हर बात में अपनी स्थिति द्वारा ही सब बातों का सलूशन होता, और यदि अपनी स्थिति पर उन बातों का असर हुआ तो फिर तो विजय किसकी, स्थिति की या परिस्थिति की? परिस्थिति की उस समय विजय हो गई, परंतु बाबा तो हमें विजयी बनाने चाहता है। तो यदि हम विजयी बनने चाहते हैं तो हम अपनी स्थिति पर इतना ही ध्यान रखें। तो मेन बात ये कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी, पहले जो मुख्य बात है, हम ये ध्यान रखें अमृत वेला और बाबा की मुरली। उसमें कोई भी कारण से हम इन दो बातों से कभी भी हटे नहीं, इन दो बातों को कोई भी कारण से हम ये न कहे कि ये संभव नहीं है, या तबियत की बात आती है, सिचुएशन की बात आती है। और यदि हम सेवा के बहाने से कहते हैं कि देखो सेवा तो लेट नाइट तक करते हैं, इस कारण से अमृत वेला नहीं होता, तो बाबा तो देख करके हंसेगा कि सेवा के साथ किस काम की रही। यदि अमृत वेले में उन आत्माओं को बाबा की लाइट माइट नहीं पहुंची तो फिर तो आपने कौन सी सेवा की। तो अमृत वेले का जब हम प्रायोरिटी बनाते हैं, मतलब कि हमारे जीवन में जिस लक्ष्य से हम बाबा के पास आए थे, परमात्मा का अनुभव करने, भगवान का मिलन मनाने, यदि उस बात से हमने अपनी आंख कुछ दूसरी तरफ कर ली, बेशक हम कहेंगे अच्छी बात है, सेवा है, परंतु आपको याद होगा कि अर्जुन को ये बोला गया था कि अपना तीर ऐसे मारो जो न सिर्फ चिड़िया को लगे और न सिर्फ चिड़िया के आंख को लगे, परंतु चिड़िया के आंख में भी जो मणि है उस तक तीर आपका पहुंचे। तो मुझे लगता है कि कभी कभी और बातों में हमारा थोड़ा ध्यान चला जाता, तो ये जो मेन बात है हमारा अमृत वेले बाबा के साथ मिलन मनाना, वो हमारे से मिस हो जाता। तो अमृत वेले का ध्यान, तो बाबा को जो शक्ति देनी है आज के दिन के अंदर, हमें मालूम नहीं है कि हमारे सामने कौन सी बातें आएंगी, कब कब थोड़ा सा अंदाज होता कि हाँ ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, परंतु उसमें किस प्रकार की परीक्षा आएंगी, किस प्रकार के संस्कारों की बातें हमारे सामने आएंगी, कई बारी हम नहीं उस बात को पहले से ही अंदाज लगा सकते। या कभी कभी कोई ड्रामा की सीन कुछ ऐसे आने वाली होती, उसका भी पहले से ही हमको पता नहीं होता, परंतु अमृत वेले बाबा से हर प्रकार से शक्ति ले ली तो फिर जो सीन आएंगी, हमारे पास शक्ति है, हथियार है, तो हम उस समय उन बातों को फेस कर सकेंगे। सवेरे अपनी तैयारी नहीं की होती है तो फिर मुझे लगता है कि दिन भर कुछ न कुछ नीचे ऊपर होता ही रहता है। मुझे लगता है कि हर एक को ये अनुभव होगा, प्रैक्टिकल अमृत वेले का फायदा। और अमृत वेला थोड़ा सा भी ढीला हो गया और उसमें भी न सिर्फ जैसे बाबा कहते हैं कि नेमी भगत नियम अनुसार बैठते हैं, चलो वो तो ना बैठने से वो भी अच्छा, परंतु सिर्फ नियम अनुसार बैठना उससे आत्मा को वो प्राप्ति नहीं होती जो जरूरत है। तो यदि हमने अमृत वेले को प्रायोरिटी बनाया और उसमें हमने ध्यान रखा कि बिल्कुल अच्छी तरह से अलर्ट होकर के बाबा से हम सर्व खजाना लेवे, सर्व शक्तियों का वरदान लेवे, तो वो हमारी स्थिति उस समय बाबा मजबूत बना लेता। और फिर साथ साथ बाबा की मुरली, और आपने ये कई बार अनुभव किया होगा, और यदि नहीं किया है तो अभी आप चेक करना कि यदि बाबा ने कुछ मुरली के अंदर बोला है और आपने उसको दिल में रखा है, वो आपने अपने जीवन में धारण किया, वही समर्पण, नम्रता भाव और निमित्त भाव बातें हमारे अंदर होंगी, और जो सीन होंगी उस सीन को देखते हम हिलेंगे नहीं। और यदि हम उस समय मजबूत रहेंगे तो हमारे द्वारा फिर अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिलेगी कि वो भी उस सीन को देख करके पास कर सके। जबकि एक व्यक्ति के अंदर डर होता तो वो डर एक ऐसी बात होती है जो फैल जाता, फिर अनेकों को भी डर होने लगता है। और यदि एक व्यक्ति के अंदर शक्ति होती बिल्कुल शांत चित होकर के रहने की, तो वो फिर औरों को भी शांत बना सकता। मुझे याद आता कि कुछ समय पहले ग्रीस में अर्थक्वेक हुआ था। अर्थक्वेक में तो वो एक पब्लिशिंग काम करती थी और ओपन प्लान ऑफिस जिसमें 12-15 लोग बैठे होते हैं वहां पर वो थी। तो फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर, और जिस समय अर्थक्वेक शुरू हुआ तो जो भी और बाकी लोग थे वो बहुत नर्वस हो गए। और ये जो थी बिल्कुल वहां ही अपने स्थान पर बहुत शांति में बैठ गई, और उनको मालूम था कि ये मेडिटेशन करती है, तो वो सभी उसको देखने लगे और कि क्या हमें नीचे नहीं जाना। घुमाया सुदर्शन चक्कर मींस हमने अच्छी तरह से स्टडी की, प्रैक्टिस की। जैसे टीचर लेसन कराता परंतु बच्चों को होमवर्क करना होता, और यदि होमवर्क नहीं किया हुआ होता तो तो नेक्स्ट डे का जो लेसन होता वो इतना समझ में नहीं आता, और टीचर भी बच्चों के चेहरे से समझ जाता कि होमवर्क नहीं किया हुआ है। आने के लिए क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं कि अब तक जो हमारी जीवन चली है, हम अनेक प्रकार के बंधनों में बंधे हुए थे। अपने मन का भी बंधन था, विकारों का भी बंधन था, औरों का भी बंधन था, लोक समाज का भी बंधन था, कितने प्रकार के बंधन थे। तो हमको अपनी स्थिति बनाने का तो कभी कोई उसने सोचा ही नहीं था। ये ज्ञान का एक शब्द है। मैं नहीं समझती ज्ञान से पहले किसने ये सोचा होगा कि मुझे अपनी स्थिति बनानी है, मुझे अपनी अवस्था बनानी है। परंतु ज्ञान के आने के बाद हम समझ रहे हैं कि ये मेरा ही विशेष खजाना है। मैं अपने मन का मालिक, मैं अपनी स्थिति को अपने हाथ में रख सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो जो बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहा, हम उस ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रियली हमें उसका अब भी फायदा होगा।